चक्रवर्ती भरत की दिग्विजय की उद्घोषणा, उनकी आयुधशाला में उत्पन्न हुए चक्र रत्न के द्वारा हो गई थी। फाल्गुन कृष्णाग्यारस को जिस दिन भगवान ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ, उसी दिन भरत के आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसी दिन अंतापुर में पुत्र रत्न की प्राप्ति उनकी रानी को हुई। और इन तीनों समाचारों को सुनकर धर्म पुरुषार्थ के सेवन को प्राथमिकता देते हुए भरत ने भगवान ऋषभदेव के समूह शरण में जाकर केवल ज्ञान कल्याणक की पूजा की। पुनः चक्र रत्न की पूजा और पुत्र रत्न के जन्मोत्सव को मनाकर प्रस्थान किया अयोध्या नगरी से दिग्विजय के लिए। उनका चक्र रत्न और दंड रत्न, ये दो रत्न आगे आगे चलते थे। आपने जान लिया कि भरत ने तीन खंडों पर विजय प्राप्त कर ली और वे विजयास पर्वत पर पहुंचते हैं जहां उनकी आदि विजय का डंका बज जाता है। पुनः कुछ दिन विजयास पर्वत पर रहकर और सारे विद्याधर एवं देवों से पूजा को प्राप्त करके अब भरत अपनी सेना के साथ आगे की दिग्विजय के लिए निकलते हैं। अर्थात तीनों क्लेच खंडों को जीतने का अब उपक्रम करते हैं और जहां जय कुमार जैसे महान सेनापति उनके हो, जहां दिव्य चक्र रत्न हो, जहां दिव्य दंड रत्न हो, वहां विजय प्राप्ति में किसी प्रकार का कोई उसमें शंका नहीं थी। आप सर्वप्रथम आगे की बात को जाने, आगे पूरी सेना प्रस्थान करती है और सब के सब इस बात के चिंतन में है कि आगे हमें तीन खंड और जीतने हैं। हिमवान पर्वत के ऊपर भरत चक्रवर्ती की विजय पताका फहरानी है। ये सोचकर सेनापति सहित सभी पूरी सेना खूब सामान अपने रथों में अपने साथ में भर लेती है ताकि हमें पूरा रास्ता पार करना है। तो धीरे धीरे करके विस्तृत रूप में आपको महापुराण का स्वाध्याय करना पड़ेगा, आदि पुराण का। और संक्षेप में आप ये जानिए कि हिमवान पर्वत पर पहुंचने से पहले जब भरत लवण समुद्र के अंदर खड़े थे और वहां से हिमवान पर्वत का रक्षक देव जो था हिमवान देव, उसके घर में एक बाण छोड़ते हैं। जैसे मागध देव क्या बाण छोड़ा था, ऐसे ही हिमवान देव के यहां बाण छोड़ करके और इस बात की सूचना दे देते हैं कि भरत आपके मिलेच्छ खंडों को जीतते हुए अब हिमवान पर्वत पर पहुंचने वाले हैं। पहले तो वो देव क्रोधित हुआ, पुनः अपने दिव्य अवधि ज्ञान से उसने जानने का प्रयास किया कि ये बाण किसका है। जब उसने जाना कि चक्रवर्ती का आगमन होने वाला है, अपने क्रोध पर अंकुश लगाया और चक्रवर्ती के समीप दिव्य पिटारे रत्न धन संपत्ति लेकर के आ गया और उनके चरणों में प्रणाम करके वह भी विनय पूर्वक उन्हें अपना राजा मान लेते हैं और उस हिमवान पर्वत पर उन्हें बिठा करके स्वागत करते हैं। उनका हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर में स्थित जो सरोवर है जहां से गंगा सिंधु नदियां निकलती हैं, उस जल को लेकर पवित्र जल से उनका अभिषेक करते हैं, राज्याभिषेक करते हैं और वहां पर घोषित करते हैं कि इस भरत क्षेत्र के छह खंडों को जीतने वाले चक्रवर्ती भरत की विजय पताका अब हिमवान पर्वत पर हैरा चुकी है। इस प्रकार से आगे चलकर वे सम्राट भरत हिमवान देव को बस में करके ब्रह्माचल पर्वत की ओर बढ़ते हैं। ये ब्रह्माचल पर्वत 100 योजन ऊंचा, मूल में 100 योजन चौड़ा और ऊपर के भाग में 50 योजन चौड़ा, यह अत्यंत शोभायमान पर्वत जहां पर हर चक्रवर्ती जाकर के अपने चक्रवर्ती की प्रशस्ति का लेखन करती है। तो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती के रूप में महाराज भरत ने जाकर उस पर अपनी प्रशस्ति लिखी, जिसका वर्णन पूज्य ज्ञानमती माता जी ने भरत का भारत नाम की पुस्तक के अंदर आदि पुराण के आधार से किया है। स्वस्ति श्री क्षाकवंशी आकाश का चंद्रमा और चारों दिशाओं की पृथ्वी का स्वामी मैं भरत हूँ। मैं अपनी माता यशस्वती के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र हूँ, श्रीमान हूँ। मैंने समस्त विद्याधर देव और भूमि को श्री राजाओं को नमनीय किया है और प्रजापति भगवान ऋषभ देव का पुत्र हूँ। मनु हूँ, मान्य हूँ, सूर्यवीर हूँ, पवित्र हूँ, उत्कृष्ट बुद्धि का धारक, चरम शरीर हूँ, धीर हूँ, वीर हूँ, चक्रवर्तियों में प्रथम हूँ और इसके सिवाय मैंने दिग्विजय के समस्त पृथ्वी मंडल की परिक्रमा दी है। मेरी जल और स्थल में चलने वाले 18 करोड़ घोड़े हैं, मेरी विजयी सेना में 84 लाख मदोन्मत्त हाथी हैं। ये सब चीज ब्रह्माचल पर्वत पर प्रशस्ति में लिखते हैं। कहा जाता है कि उस पर्वत पर 1 इंच की जगह खाली नहीं रहती, असंख्य चक्रवर्तियों की प्रशस्ति लिखी है और एक किसी चक्रवर्ती की प्रशस्ति को मिटा करके जो होने वाला चक्रवर्ती नया होता है वो अपनी प्रशस्ति को लिखता है। भरत चक्रवर्ती ने भी लिखी, यद्यपि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ना किसी का नाम रहता है और ना किसी का अभिमान रहता है, लेकिन ये सब व्यवहार काल के अंदर जब चक्ररत्न उत्पन्न होता किसी की आयुधशाला में तो चक्रवर्ती बनने का उसमें नियोग तो रहता ही है। इसलिए ऐसी प्रशस्ति को लिखते हुए भरत को भी अपने इक्ष्वाकुवंश पर बड़ा ही गौरव हुआ था। उस समय सारे देवताओं ने मिलकर चक्रवर्ती भरत की जय हो, आप सदा जीवंत रहें, आपकी वृद्धि हो, आप निरंतर प्रगति उन्नति करते रहें। इस प्रकार से विद्याधर लोगों ने भी उनका खूब स्वागत किया था। ऐसे सम्राट चक्रवर्ती भरत की सेना अब 6 खंडों को जीत करके आगे अयोध्या में प्रवेश करने वाली है। उसका वृत्तांत आप सब श्रवण करते रहेंगे।